जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा बिहारी जीव की जय। ओं विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वरजष्टोत्तर शतशिष्मद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। ओं विष्णुपाद शिष्यमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कलि वैष्णव वृंद की जय। हरिवास तिथि की जय। तिथि पालन करे भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवद्विषये हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि विश्वांशे प्रणमामि हरिभ्यो आ देवी काकुभरभगवदयात्रिवाचा जाचे भक्तो भटाति आश्रादुषाभवदस्य जनस्य भूत्वा अङ्गश्यामलिं छटाभिरवित मन्दे कृतेन्द्रिवरा जातं जागुदरोचिसं विदधतनुपट्टं वृन्दारण्यनिवासिनं मृदिवशद्भावाभिरामोदं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं नान्दाम् चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये पितामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो यं प्रभृतमन्त्रेतमपेतकृष्णं द्वैपायनो विरहकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया कर्वो भेदो तं सर्वभूतहृदयं त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि नैवान्तया इति विज्ञाय राधिकं मां करोतु एकादशी तिथि उसमें विष्णु शिखर जो लेते हैं
ना भोई में एकादशी बराहादशी
आज भाई में एकादशी और बराह द्वादशी और परसों है
नित्यानंद त्रयोदशी
प्रभुजी का त्रयोदशी जहाँ पर एकादशी हो और उसमें जो महाद्वादशी का मिल जाए तो एकादशी को छोड़कर के द्वादशी में भी करना उचित है। तो उसका एकादशी को छोड़ देने का कोई फर्ज नहीं होता, पक्षपात नहीं होता और द्वादशी से करने से उसका फल अधिक होता है। जैसे अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी व्रत किया, किंतु उसमें एक साथ और बात है, यदि उसके दूसरे दिन ही कोई व्रत पड़ता है तो लगातार दो व्रत करने में असुविधा होती है। इसलिए हमारे आचार्य ने नित्यानंद प्रभु को भी त्रयोदशी ही मनाना है, परसों ही है और आज है एकादशी, कल है द्वादशी। यदि द्वादशी में व्रत किया जाए तो नित्यानंद प्रभु और छूट जाएगा और नहीं तो एकादशी को निर्जला करना पड़ेगा, द्वादशी को
निर्जला
और निर्जला और नित्यानंद प्रभु जी का
अनुकल्प
करते हैं। इसलिए इन सब कष्टों को देख करके वैष्णव ने ऐसा हरिभक्ति के विलास के अनुसार ऐसी एक प्रविधान बनाया कि यदि महाद्वादशी का योग है और उसके पहले एकादशी है और दूसरे दिन महाद्वादशी और तीसरे दिन नित्यानंद प्रभु जी का उपवास यदि है, उस स्थिति में एकादशी के दिन द्वादशी का व्रत कर लिया। भरत जी का जन्म की भावना करके और एकादशी के दिन को व्रत कर लिया, दूसरे दिन पारण कर लिया और फिर नित्यानंद प्रभु जी का त्रयोदशी। जिनको नित्यानंद त्रयोदशी नहीं करना है वो कल कर सकते हैं, किंतु हम लोग को एकादशी भी छूट जाए कोई बात नहीं है, किंतु नित्यानंद प्रभु जी की त्रयोदशी भी तो नहीं छूटेगी ना, वो दोनों अपरिहार्य है। इसलिए द्वादशी वाले को छोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु जी को ग्रहण कर लिया, इधर एकादशी भी हो गई, नित्यानंद प्रभु जी का अर्चन कर कल बराह जी का द्वादशी के लिए कल उनका पूजा अर्चन कर लेंगे सवेरे और कर करके पालन कर लेंगे उनको बोल देंगे। इन सब कारणों से ये आज ही के दिन में एकादशी का व्रत हम गौरी वैष्णव ने निर्णय, नित्यानंद के प्रभु जी के भी प्रति हो जाए, इधर एकादशी हो जाए, द्वादशी भी हो जाए, एक श्रृंखला में हो, ऐसे ही एक विष्णु श्रृंखल योग भी पड़ता है। उसमें कोई कोई वैष्णव लोग दोनों दिन को उपवास कर लेते हैं और कोई कोई जो विष्णु श्रृंखल योग में महाद्वादशी को कर लेते हैं एक ही दिन में, एकादशी द्वादशी एवं संश्रृंखल योग। तो अभी कुछ दिन हुए, कल परसों गई अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव तिथि
सप्तमी के दिन,
सप्तमी और आज एकादशी, इधर में
परसों नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि।
ये अभी कुछ दिन पहले रूप गोस्वामी या किसका,
रघुनाथ दास गोस्वामी
जी का गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का,
विष्णुप्रिया देवी,
विष्णुप्रिया देवी जी का, ये सब गया। ये महीना सब वैष्णव के और भगवान के विशेष तिथियों में जा रहा है। साफ महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को प्रकट कराएंगे, अद्वैताचार्य जी को प्रकट कराएंगे, सब लोगों को प्रकट कराने के बाद में नित्यानंद जी को भी अब परसों प्रकट कराएंगे और सब जब ठीक ठाक हो जाएगा तो पूर्णिमा में फागुन स्वयं। इसलिए ये सब वैष्णव की तिथियाँ आजकल खूब आ रही हैं, उत्साह के साथ में हम लोग उनका पालन करेंगे और सबसे पहले महाप्रभु के दिन होली के दिन महाप्रभु जी का। आज एकादशी, पहली एकादशी और बारह द्वादशी दोनों, भैमी शब्द दो प्रकार से बनता है, भूमि से भैमी अथवा भीम से भैमी, दोनों ही बनेगा। तो यहाँ पर भीमसेन का शायद होगा कि नहीं, क्यों अभी निर्जला एकादशी जो भीमा एकादशी उधर जो गई
पांडवा
निर्जला एकादशी वही भीम वाली है और इसको भैमी एकादशी भी कर भीम का यदि करेंगे तो सुनते हैं ये भीम को कृष्ण ने बतलाया कि भाई तुम कम से कम एक एकादशी तो रहो, मुझसे रहा नहीं जाता, बलवान लोग भी एकादशी नहीं रख सकते, ऐसे लोग ही दुबले पतले हैं एकदम क्षीण काय हैं, वो भी चाहे तो चार पांच दिन छह दिन उपवास कर लेंगे। आप बड़े बड़े पहलवान जो रेसलिंग करने वाले हैं वो लोग नहीं कर सकते, एक दिन में ही उनकी लग जाएगी, छठी का दूध याद हो जाएगा, भीतर में आत्मा उनका प्रबल नहीं होता। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी को कह दिया जाए, एक तो केवल मट्ठा लेते हैं छोड़ा सा और रखा दिया तो महीनों रह जाएंगे। हरिदास ठाकुर हैं, हमारे जितने भी वैष्णव लोग हैं वो रह जाएंगे, किंतु वो लोग बिना खाए पिए एक तो हनुमान उनका भी वही, जितने पांचों खाते थे छह अकेले भीम खाते थे और एकादशी के दिन उनका घबरा जाते थे, तो कृष्ण ने अनुग्रह कर, अच्छा तुम ऐसा करो 12 महीने में एक दिन तुम एकादशी करो, तो एक दिन भैमी एकादशी के दिन में वो के लिए एकादशी रखो। पांडवा के लिए उसके लिए कहा गया, फिर भैमी भी उसी का सुन, और नहीं तो भूमि संबंधी उसको एकादशी। बारात द्वादशी बारात भगवान का आज ही के दिन में आविर्भाव हुआ था। हिरण्यकश्यपु हिरण्यक्ष दो भाई, एक गर्भ में पहले आया और एक भूमिष्ठ हुआ पहले। तो एक पहले गर्भ में आया व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति उससे पीछे गर्भ में आया, किंतु भूमिष्ठ हुआ पीछे वाला, तो वो बड़ा होगा कि छोटा होगा?
दो तरह के विचार,
यही बात दोनों में हुई। हिरण्यकश्यपु आया गर्भ में पहले और हिरण्यक्ष आया बाद में, किंतु हिरण्यक्ष पहले जन्म दिया और पीछे से
हिरण्यकश्यपु,
तो इसलिए जो गर्भ में पहले आया उसी को ही बड़ा माना जाता है। दोनों एक ही थे, एक ही स्वरूप के, एक ही स्वभाव के, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना, माने अर्थ, माने कामना, संसारी कामनाओं का नाम ही अर्थ है, उसी को सोना भी कह सकते हैं। और दूसरा हिरण्य कशिपु, कशिपु माने होता है सुंदर से पलंग पर सो जाना खूब आराम के साथ में, ऐसे लोग को कहते हैं हिरण्याक्ष। माने हिरण्य पर जिनकी दृष्टि है, दृष्टि है, वो सब समय अर्थ को ही सुख का कारण समझते हैं। दोनों भाई थे, ये जरा उद्धत था बेसी हिरण्याक्ष, वो विष्णु को खोज रहा था मारने के लिए, लड़ने के लिए, अपने समान समकक्ष योद्धा खोज रहा था, कोई समकक्ष योद्धा नहीं मिला। स्वर्ग गया तो देवता लोग डर के मारे सब स्वर्ग से भाग गए, पाताल में गया, नागलोक में गया, जहां गया सभी लोग भाग जाते, उसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत चिंता जी हमारे साथ कोई लड़ने वाला नहीं, तो कुबेर के पास में गया लड़ने। कुबेर ने कहा जैसे भाई मैं तो तुम्हारे साथ में लड़ नहीं सकता, हाँ एक योद्धा का नाम बतला देता हूँ, तुम उससे लड़ सकते हो। तो कौन है? तो कहने विष्णु वो योद्धा है, तुम्हारा मान मर्दन कर देगा, तुम उसको जाओ। कहाँ मिलेगा? तो वही ठिकाना ही गड़बड़ी है, वो सब जगह रहता है कहीं नहीं रहता। तब एक बात है मैं बतला देता हूँ, वो अमुक समय में प्रलय बारी में डूबकर पृथ्वी को, जो अपनी धुरी से चली जाएंगी दूसरी जगह पाताल में, उनको वो निकालने के लिए वो जाएंगे उस समय, और उसी समय तुमसे भेंट हो सकते। खिलखिला करके हंसने लगा, मान मर्दन कर देंगे, वो इसका अर्थ नहीं समझा। अंततः एक वीर तो मिल गया, विष्णु कहाँ है? सर्वत्र है, हम कहते हैं किंतु विश्वास नहीं है। हम अभी चोरी करते हैं ना, चोरी करते हैं, छिपाते हैं किसी से, उनसे भी कुछ छिपाते हैं। यदि ये सचमुच में विश्वास है, ये विष्णु हमारे ही अंदर ही है और हमारे समस्त भावनाओं को जानते हैं और उसको पूर्ण भी कर सकते हैं, तो फिर कोई बात नहीं होती, किंतु हम नहीं समझते। जैसे वो था, जैसे वो देहात्मवादी था, हम भी अभी देहात्मवादी हैं, किंतु वो थोड़ा सा विरोधी था, और हम लोग विरोधी तो नहीं हैं किंतु हैं ही विरोधी, अभी विरोधी भाव है। कामना वासना भोग इत्यादि में लगे, क्रोध दंभ इत्यादि वैष्णव के आगे आते भी, किंतु तिनादपि सुनेच नम्र विनयी दैन्यनि अकड़ करके रहते हैं छाती निकाल, एक कहेगा तो उसका दो उत्तर दे देते हैं। ये सब वैष्णव के यहाँ रहने का ये तरीके नहीं, खूब दीनता पूर्वक रहे, माटी की मूर्ति हो जानी चाहिए जैसे व्यवहार करे वैष्णव। ये है आत्मनिवेदन। हम लोग भी कभी कभी आ जाते हैं तो अकड़ से चलते हैं, अब मैं समझता हूँ उससे तो अधिक समझता है, यही गड़बड़ी हो जाती है। तो वैसे वो था अकड़वाद, वो जो समझ लिया किसी के अनुगत्य में नहीं था, जैसे हम लोग हैं दिखलाने के लिए, बहुत कम हैं जिनको अनुगत्य। तो वो सतत रहने पर भी विष्णु को क्या देखेगा, वो दिन की प्रतीक्षा करने लगा। नारद जी मिल गए, नारद जी से कुछ और मिल गया, अनुकूल जो कैसे कहाँ मिलेंगे। बस ब्रह्मा जी सोच रहे थे, दिन खत्म हुआ था, रात गई, रात भी अब खत्म हुई, अब दिन आया। दैनंदिन उनकी सृष्टि पृथ्वी रसातल में है, ये सोच रहे थे जैसे पृथ्वी कैसे अपनी धुरी पर आए और सृष्टि का व्यापार कैसे चले। इतने में जोर से छींक आ गई, और छींक में छींक कब आती है, नाक के छिद्र पर कोई भी रुकावट होगी तो छींक आती है, ऐसे छींक नहीं आती। तो वो छींक हुई, उसमें से झट कुछ निकल आया, निकल करके आया, देखा छोटी सी चींटी से भी छोटी थी, और वो धीरे 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 बढ़ने लगा, उसका रूप निकला, धीरे 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 पहाड़ जैसा हो गया, धीरे विराट शुकर का रूप धारण किया। उसके पैर एक जगह और सिर हजारों मील दूर, इतना विशाल रूप हो गया। और उनके देखते देखते ही जो ब्रह्मा सोच रहे हैं कि क्या क्या ये क्या चीज है, क्या हुआ, और अगले पैर को ऐसे कर दिया, वो अगले पैर से चलते हैं। जब आदमी पुल पर या कहीं नदी में कूदना चाहता है तो कैसे कूदता है, पैर को ऊपर कर देगा और एकदम ऐसे सिर के बल से जाता है, जो जानने वाले हैं। और जो ऐसे हम तो डूबने का उसमें डर है, पैर के तरफ से जो चलते हैं, वो तरीका नहीं है। उससे तो होगा ऐसे जब जाएगा तो नाक उपमान पानी नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा ना, और ऐसे जाएगा तो सीधा जाएगा, सब कुछ ये सब कारण है। तो वो एकदम ऐसा करके उसे चीरता हुआ पानी, पैरों से पहले पानी को चीर करके, इसके बाद खुथुन, और इसके बाद पृथ्वी को अपने दांत पर ले लिया और निकलने लगा। इतने में ये पहुंच गया, अरे चोर तू कहां भागा जा रहा है इसको लेकर के पृथ्वी को। तो सोचता है तुम मैं सुरक्षित लेकर के चलाएंगे, ये नहीं होगा। और उनको तरह तरह से अपमानित शब्द करते हुए और उनके पीछे दौड़ा, और ये इतनी तीव्र गति से निकले उसको पता ही नहीं चला कब लेकर के चले, एकदम ऊपर चले आए और उसकी धुरी पर रखा, तब तक पीछे से आया। वहां पर हजारों वर्ष तक, एक दो वर्ष नहीं, हजारों वर्ष। यदि हिरण्यकश्यप कितना 60,000 वर्ष तपस्या कर सकता है, 60,000 वर्ष, तो इन्होंने कितने दिन तक युद्ध हुआ, और युद्ध में अंत में प्रभु ने उसको मार दिया, थप्पड़ से ऐसा मारा जी को कनपटी या गदा से कनपटी फूट गई और जीत गया। इसके बाद में पीछे से हिरण्यकश्यप का वध हुआ, फिर पृथ्वी को शांति। यह है बड़ा भगवान की, यह है पहले होता है मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, फिर बड़ा, इसके बाद नृसिंह अवतार, पहले जलचर, इसके बाद में उभयचर, कच्छप जल में भी और स्थल में, और फिर
स्थलचर,
स्थलचर सूखा पर स्थल में रहेगा, किंतु पानी में भी तैरता है, किंतु कम पानी में रहेगा। और निसिंग कैसे?
न मनुष्य न
जानवर भी नहीं, ऐसे लोगों के लिए। और इसके बाद में निसिंह
बामन,
बामन खरबा को भी, खरबा को पूर्ण आए हुए पर सुना, किंतु जंगली लड़ाई झगड़ा माफ कीजिए इसी में। और इसके बाद में सुंदर आदर्श मर्यादा संपन्न राम। और इसके बाद में आए बलदेव, बलदेव के बाद में अब कल्कि,
बुद्ध,
और बुद्ध के बाद में आए
कल्कि,
कल्कि के बाद में फिर सतयुग का ऐसा। इसलिए क्रम विकास भी कुछ इसमें है, सभ्यता के क्रम विकास के अनुसार में ये सब अवतारों का भी कर्म विकास ये सब दिखलाया गया है। इसलिए पहले मत्स्य अवतार की आराधना, इसके बाद में कुर्म की, इसके बाद में बराह देव की, सत्यजी में बराह की आराधना भी नवद्वीप में वासुदेव पंडित करते थे। बहुत से लोग हैं मरीचि इत्यादि, और वो स्वयंभू मनु इत्यादि ये मत्स्य अवतार की पूजा करते थे। अपने अपने भाव और रुचि के अनुसार में, साधना के विकास के अनुसार में ये सब उपासना है। इनमें से किसी के भी प्रति लगे, धीरे 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 बढ़ते 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 राधा कृष्ण के प्रति एकांतिक रूप में भक्ति होती है। प्रेम भक्ति चंद्रिका, दस तक हम लोग पढ़ रखे थे। जय रूप सनातन देह मोर यही था, से रतन मोर गले था। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करी, कल उसके संबंध में हमने बताया था। अब यहां से आरंभ कर रहे हैं। ये सब में समझो कि ये पुस्तक का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसमें प्रेमा भक्ति रागानुगा भक्ति का ही कैसे हम पहुंचेंगे उसी के लिए चंद्रिका है। उसमें प्रकाश है जो हम इस रास्ते को ये दिखलाने वाली है। इसलिए इसमें जहां वैदिक भक्ति के भी संबंध में है कुछ ऐसा मालूम पड़ता है, किंतु समझो जी रागानुगा की ये विधि है और उसको कैसे इस पर प्रयोग करना पड़ेगा ये सब समझना होगा। रूप गोस्वामी कहते हैं प्रेमा भक्ति, उत्तमा भक्ति मैंने क्या, प्रेमा भक्ति पहले है, साधन भक्ति फिर भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के समय में ये कनिष्ठा भक्ति समझो, भाव भक्ति जो है वो मध्य भक्ति है, मध्यम है, और उत्तमा भक्ति है ये अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। बहुत बार हमने इसके संबंध में हमने बतलाया है, कभी एक संक्षेप में सुन लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं अन्नाभिलाषा छाड़ी, अन्नाभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय मने करीब भजन, करीब भजन साधु संगे कृष्ण सेवा ना कुजीव अन्न देवा ए भक्ति परम काम। मूल श्लोक है रूप गोस्वामी का अन्नाभिलाषिता शून्यम। सबसे पहले भक्ति राज्य में चलने के लिए कोई भी कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा हमारे अंदर और बाहर हमारे मन में है तो उसको हटा, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। हमारा यह संसारिक सुख हो, हमें यह वैभव हो जाए, हमारे ये सब लोग प्रसन्न हो, मैं स्वर्ग में जाऊं, मुझे मुक्ति मिल जाए, ये सब जितनी भी हैं अभिलाषाएं, ये अन्याभिलाषा, इसलिए किसी प्रकार की नहीं अभिलाषा। जब कोई साधक आरंभ करता है उस समय ये नहीं जाएगी, जब भक्ति उत्तमा होगी तभी ये दशा आएगी, ये भी समझ रहे हो। जब आरंभ करेंगे उस समय में अन्याभिलाषिता भरी रहेगी, ज्ञान कर्म ही भरा रहेगा, यहाँ तक कि अन्याय दुराचार काम क्रोध लोभ मद मोह ये भरा रह सकता है। भक्ति उसी समय में की जाएगी, तब उसका नाम होगा साधन भक्ति। जब यही उत्तमा भक्ति इंद्रियों के द्वारा की जाती है भाव को उत्पन्न करने के लिए, तब वो होता है साधन। जिस भक्ति का उद्देश्य भाव भक्ति को उत्पन्न करना नहीं होता, वो औपाधिक भक्ति होती है, सकाम भक्ति होती है, वो अशुद्ध और निष्ठा भक्ति होती है, वो सांसारिक सुखों को दे देगी और बस वहां से अंतर्ध्यान हो जाएगी। भक्ति वृत्ति नाम की है, वो लादनी शक्ति या स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। जहां किसी में ये हुआ, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, मैं कृष्ण की सेवा करूंगी, मैं कृष्ण का भजन करूंगा या करूंगा, ये समझो ये वृत्ति तुम्हारे अंदर की नहीं है, मन की वृत्ति नहीं है, ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति। किसी भी कारण से साधु गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों में से किसी की जरूर कुछ कृपा हुई है जो हमारे अंदर में ये वृत्ति आई है, ये संसार की वृत्ति नहीं। तो कोई भी प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त, किंतु अभी हम लोगों के अंदर में कितनी प्रकार की अन्य अभिलाषा, ऐसी भी अभिलाषाएं हैं जिसको हम जानते नहीं और सोच रहे हैं ये कृष्ण भक्ति है, किंतु है अन्य। किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कोई अर्चक भी है, वो भोग दिया ठाकुर जी को, थाला उतर आया, उसमें आज खीर थोड़ी सी भोग दी गई है, उसने थोड़ा सा उतार करके ही या वहीं पर ठाकुर घर में ही भोग देने के बाद में अपने लिए कटोरी में लेकर के छिपा करके रख दिया, ये क्या चीज है, इसको कौन देखेगा, वो जो कर रहा है उसका चित्त देखेगा ना, कौन देखेगा, वो तो सोचा है कोई नहीं देख रहा, ये ठाकुर जी भी नहीं देख रहे हैं, ये अपराध हो गया, और हो गया ना एक अपराध, ये ठाकुर जी नहीं जानते, उनको जड़ मुक्ति मांगी, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। यहां तक कि भजन करने में भी गुरु वैष्णव बैठे हैं, मान लिया वो निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे चलो, देखो ये शास्त्र से याद कर लेना और यहां पर तुम पाठ करना। वो सोच रहा है कोई व्यक्ति कि भाई ये गुरुजी ने तो कहा पाठ करने के लिए, यदि पाठ करेंगे याद करेंगे तो हमारे अंदर में पीछे से अभिमान आ जाएगा और अभिमान आने से लोग मुझे प्रतिष्ठा देने और तब मेरा पतन हो जाएगा, तो इच्छा ये तो ठीक नहीं है, इसलिए गुरु जी के इस आदेश को पालन न करना ही मेरे लिए अच्छा है। अब ये क्या हो गया, क्या हुआ, ये गुरु जी ने देखा उसके विचार को, कहा भाई बैंगन में पानी देना, बैंगन में पानी, बैंगन में पानी देने के लिए मैं आया था, हरिनाम कर रहा हरे कृष्णा मैं गांव में अपने जमीन में घूम रहा, हरे कृष्णा और वहां का जितना काम है करना, किसी से लड़ झगड़ रहा, किसी आज घर में गया धर्म की माता जी के पास में मथुरा में, हमारी एक धर्म की मैया है और उस मैया के पास में मैया ने बड़े प्रेम के साथ में घी चुपड़ी हुई और कुछ अच्छी रसगुल्ले दे आदमी के घर में भोग लगाया, हमारे लिए सजो करके रखा था। मैं ध्यान ही में वहां हरे कृष्ण और पहुंच गया उनके घर में और उसको ले गया। अच्छा ये भजन हुआ क्या? अब इसको कौन पकड़ेगा? हम लोग सोच रहे हैं ये मामू भजन कर रहे हैं, किंतु ये मामू क्या कर रहे हैं? यदि वो बैंगन में परिश्रम करके कहीं से जमुना से पानी ले आता, बैंगन में दे देता या कुएं से अच्छा पानी, तो वो थोड़ा सा परिश्रम करता और उससे जो फल होता है ठाकुर जी को भोग लग जाता, तो ये एक तरह से अच्छी थी, ये बुरी भावना तो नहीं आती। इस तरह से ऐसी भी चीजें हैं जिसको साधक सहज रूप में पकड़ नहीं पाता। इसलिए हमारे समझ से अपनी बुद्धिमानी खुदा के ऊपर में, गुरु जी के ऊपर में खुदागिरी मत करो। कहते हैं ये देखो इसको याद करना, तुमको पत्रिका का ये बना है संपादक, हमने कोई विचार नहीं किया, गुरु जी ने कह दिया बस। हमने ये विचार नहीं भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, भक्ति है कि नहीं है, कुछ भी विचार उस समय हमारा विचार ही नहीं, सादे जे गुरु जी ने कहा एट एनी कॉस्ट ये होना चाहिए, हम इसी को भक्ति में। इसलिए विचार मत करो, वो है ना नौ अवमान्य कर, विचार विचार न करके जो आदेश दिया उसको पालो। ये नहीं बंगला में है, हमारी योग्यता है नहीं, हमारा क्या होगा इनके आदेश पालने से? यदि नरक में जाना होगा तो हम उसके जाने के लिए जो कुछ भी होता। हम लोग घर से जब आए तो सोचते थे जब हम प्रचारक होंगे और हजारों आदमी हमसे सुनने के लिए आएंगे, कहां कहां से सब, और इतने पुस्तकों का हम लोग संपादन करेंगे और ये करेंगे, इधर उधर चारों तरफ ना दे। गुरु जी ने कहा जैसे करो, बैठा दे करके मथुरा में बैठा दे, करो ये सब। मैंने कुछ विचार नहीं, हरिनाम माला न हो न हो को उनका आदेश पाला, बस ये ग्रंथ देखा वो ग्रंथ देखा ये देखा, दिन रात चौबीसों घंटा। यदि हमारा हरिनाम करते और खुला दिमाग तब तो मैं कहां नरक में चला जाता चिंता में और असत्संग होकर के घूमा एक सेकंड की। इस तरह से गुरु जी लगाते हैं वैष्णव लोग, उस पर विचार मत करो क्या भविष्य होगा, ये मत विचार करो हमारा ऐसा करने से ऐसे होगा ऐसा, बस उनका आदेश पालन करना ही। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने गुरु जी का उपदेश पालन करने के लिए यदि मुझे नरक जाना पड़ेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर के नरक में जाना चाहता हूँ, ये सब चाहिए साधक के लिए, ये सब जरूरी अपने आप उसको विचार, बस देखना जो उनका आदेश कैसे पालन होगा इस पर चलने की। इसलिए कहते हैं वो जैसा हम सोचते हैं ना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी को कहा जगन्नाथ दास प्रभाद नारायण के बाबा जी शिष्यों ने, देखो जाओ बैगन में पानी डालो, गेंदा के फूल और ये सब उगाओ और ठाकुर जी का माला इत्यादि बनाओ। इसके बाद में उन लोगों ने कहा जी हम लोग तो इस काम के लिए नहीं आए, भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा, भक्ति विनोद ठाकुर विचारक थे, उन्होंने कहा जैसे जो गुरु जी कह रहे हैं वही करो और यदि नहीं करेगा हम ऐसे करते हुए अष्टकाली लीला का चिंतन करेंगे वो अभिलाष हो जाएगा। वो सब गुरु जी जिस आदेश से हमारा अधिकार समझ करके जिस रूप में भेज रहे हैं उस रूप में चलेंगे, ये है साथ में वो हमारा भला मन जानते हैं। यदि न रहते तो कोई दूसरी बात, यदि है तो उसके अनुसार अपने को छोड़ देना चाहिए। इसलिए अन्य अभिलाषिता अन्य अभिलाष सब छोड़ना चाहिए, कोई भी अभिलाष अब हमारे अंदर, बस गुरु वैष्णव का आदेश पालन करते हुए हमको भक्ति का कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में बढ़े, बस यही एकमात्र अभिलाषा रहेगी। यहाँ पर अन्नाभिलाषिता शून्यम कहा, मैंने और भी बार बतलाया फिर से एक बार बतला देता हूँ, अन्नाभिलाषिता का शून्य का तात्पर्य है यदि हो सहवास में जब हम अपने साधारण स्थिति में हैं,
स्वाभाविक स्थिति
में हैं,
उस समय में कोई तरह की अभिलाषा नहीं करना चाहिए, स्वभाव में नहीं कोई होना चाहिए, स्वाभाविक स्थिति में प्रभु से कुछ मत प्रार्थना या कोई अन्नाभिलाष मत रखो। अस्वाभाविक स्थिति आ जाती है और उस समय में तुम चित्त को कंट्रोल करने लायक नहीं हो और उस समय कुछ हो जाता है तो उसके लिए वो भक्ति का बाधक नहीं। जैसे द्रौपदी जी के ऊपर में ऐसा संकट आया प्राण जाने का, लज्जा जाना तो कोई मैंने प्राण से प्राण चला जाए किंतु लज्जा ना जाए, और वो लज्जा उनका सिद्ध छूट रहा है। उन्होंने एकदम अस्वाभाविक स्थिति में हे प्रभु रक्षा कर। ये है अन्नाभिलाष, अन्नाभिलाषता नहीं है ना? अन्नाभिलाषिता माने किसको कहेंगे, स्वभाव में ही। अर्थात तो अभी हम लोग बैठे हैं सोच रहे हैं भाई आज हमारे पास में रुपए हैं तो एक सोना जी का ठाकुर जी बनाते और वैष्णव को लेकर के यहां पर तरह तरह से उत्सव मनाते और लोग देखते हैं कि हाँ मैं कौन हूं, बड़े ठाट बाट से का। ये हो गया अन्नाभिलाषिता। और यही हठात विपत्ति आ जाए तो 10-5 गुंडे आकर के पकड़ लिए और मुख से निकल जाए प्रभु रक्षा कीजिए, ये अन्नाभिलाष है। कब स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक स्थिति में हुआ। इसलिए अस्वाभाविक स्थिति में यदि कोई कामना हो जाए, जैसे मान लिया कि पैर में कांटा चुभ गया और उस समय में लालसा हुई जाए पैर में कांटा चुभ गया जल्दी से निकालो। ये पैर में कांटा चुभना तो क्या है, ये उसको निकालना तो अन्नाभिलाष है, अपने लिए तो निकाल रहे हैं तो अन्नाभिलाष हुआ, किंतु अस्वाभाविक स्थिति में हुआ। और ये यदि सोचे जैसे इसी से भगवान की सेवा होती है तब तो इसके लिए भाई ये निकाल दो। इस तरह से अन्नाभिलाषिता शून्य, स्वाभाविक स्थिति में कभी भी भगवान से भक्ति के को छोड़ करके और कोई अभिलाषा न। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, भाई ज्ञान और कर्म तो किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं सकते, जब तक ये शरीर है ज्ञान भी नहीं छूटेगा और कर्म। किंतु देखो ऐसा कर्म और ज्ञान न लो जैसे कि भक्ति ही छिप जाए, अच्छा भी हो जाए। और कुछ ज्ञान और कर्म है जो भक्ति को आच्छादित कर देते हैं, वो क्या, निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रूपी जो ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, ये यदि थोड़ा आएगा